الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ زاریات کی آیت نمبر 20 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ ان آیات سے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الارض آیات للموقنین اور زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین میں اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ خود زمین کا وجود، اس کی وسعت، اس میں گڑے ہوئے پہاڑ، اس میں اگنے والے درخت، اس کے اندر موجود معدنیات، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں اور بھی مقامات پر زمین میں پائی جانے والی نشانیوں کی تفصیلات کا بیان کیا گیا ہے، تو اور بہت ساری آیات اور بھی ہیں جن میں اس کا بیان ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور خود تمہاری ذاتوں میں نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں زمین میں بھی ہیں، زمین میں بھی خدا کی قدرت کے بے شمار مظاہر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خود تمہاری اپنی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، اور بلا شک و شبہ ہم اپنے وجود کے اوپر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایسی ایسی صورتیں نظر آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم و شان قدرتیں نظر آتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ہمارا وجود میں آنا، ہم کس سے پیدا ہوتے ہیں اور کیسے ایک پورے انسان بن جاتے ہیں، پھر ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نظام فٹ کیے ہیں، جو ہمارے اندر نظام اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، آج تک تو ہم ان کو پوری طرح دریافت نہیں کر پائے، یعنی ہم ان کو تلاش بھی نہیں کر پائے، ہم ان کو ڈھونڈ نہیں سکے، ہمیں ان کی ابھی تک معلومات نہیں ملی۔ آئے دن ایک سے بڑھ کے ایک تحقیق ہوتی ہے اور انسانی وجود کے اندر نئی چیزوں کا بیان آتا ہے۔ خود انسان کے جین سے، ایک انسان کا جین جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ جو جین کوڈ ہے، اگر صرف کبھی اسی کی آپ تحقیق پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی قدرتوں کا ظہور فرمایا ہے۔ ایک جین کے اندر، ایک ایک انسان کے وجود کے ذرے کے اندر، ایک ایک بال کے اندر، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، آنکھ ہے کیا؟ آخر ہماری پیشانی کیوں نہیں دیکھتی؟ آنکھ دیکھتی ہے۔ ہمارے کان سنتے ہیں، آنکھ کیوں نہیں سنتی؟ ہماری زبان بولتی ہے، ہمارے کان کیوں نہیں بولتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے اعتبار سے ایسا خوبصورت ایک نظام بنایا ہے کہ جسے بہتر کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا تمہارے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، پھر جو ہمارا باطن ہے، جو ہمارے جذبات ہیں، جو ہماری سوچیں ہیں، خیالات ہیں، اور وہ جو اس کا پورا سسٹم ہے، یا اور نہیں تو صرف انسانی دماغ کے اوپر کبھی آپ کو تحقیق پڑے، انسانی دماغ کی پیچیدگیاں اور باریکیاں، کبھی کسی جو دماغ کا ڈاکٹر ہو، نیورو سرجن جیسے ہوتے ہیں، ذرا ان سے معلومات لیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کی قدرتوں کا کیسا ظہور ہوتا ہے۔ انسانی دماغ دنیا کی پیچیدہ ترین مشینری، اور کیا کیا اس کے اندر ہے وہ بھی صرف وہ پتہ ہے کہ جو سامنے نظر آتا ہے اور کچھ اندازے ہیں، بقیہ وہ جو قوت حافظہ ہے، قوت وجدان ہے، اور وہ جو دیگر قوا اور قوتیں انسانی دماغ میں موجود ہے، اس کا تو ہمیں ابھی بھی ادراک نہیں پوری طرح۔ تو فرمایا تمہارے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ خدا کی کیسی قدرت ہے؟ और फरमाया कि आसमान में तुम्हारा रिस्क है। आसमान में एक तो रिस्क यूं है कि आसमान की तरफ मंसूब शय वो होती है जो जिसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ होती है, और मुराद ये कि अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के पास तुम्हारा रिस्क है, तुम्हारा राजिक वो है, तुम्हारे रिस्क के खजाने खुदा के पास। और एक इसकी तफसीर वो है जो मारूफ है, वो ये है कि आसमानों में तुम्हारा रिस्क है से मुराद ये है कि आसमान के जो इस कुर्रा है, इसके जो बालाई खित्ते हैं, यानी जो हमसे बाला है, बादलों का जो बनता है, लेवल बनता है, वहाँ पर बारिश का पानी है जो बरसता है और उसके ज़रिए रोइदगी होती है, पैदावार होती है, फल फूल बढ़ते और फूलते हैं और पैदा होते हैं, और वो हमारा रिस्क है। और फरमाया वमा तू अदून, और आसमानों में है वो जिसका तुमसे वादा किया जाता है, क्या वो सजा और वो बदला जो लोगों को उनके कुफ्र व शिर्क और उनकी सरकशी और उनके उदूल अनिल हक की वजह से दिया जाएगा। फरमाया ये सब आसमानों में है कि खुदा जब अज़ाब नाजिल करता है तो आसमान से उसका फिर नुजूल होता है, फरिश्ते वो अजाब लेके नाजिल होते हैं। और या ये है कि आसमानों में वो सवाब व अजाब लिखा हुआ है, नेकी है तो उसका सवाब आसमानों में लिखा है, बुराई है तो उसका अजाब आसमानों में लिखा हुआ है। अब इरशाद होता है फवरब्बिस्समाई वल अर्द इन्नहू लहक्कुम मिस्ला मा अन्नकुम तन्फिकून, तो आसमान और जमीन के रब की कसम, बेशक ये हक है वैसी ही जबान में जो तुम बोलते हो। ये हक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं आसमानों जमीन के रब की कसम, और फरमाया कि ये कैसी कसम है, ये जैसे तुम अपनी जबान में कसम खाते हो किसी बात का यकीन दिलाने के लिए और किसी बात की पुख्तगी को बयान करने के लिए और अपनी बात को मुअक्कद करने के लिए, ताकीद उसमें पैदा करने के लिए, जैसे तुम कसम खा के कहते हो, अल्लाह ताला उसी तरह फरमाता है कि मुझे आसमान और जमीन के रब की कसम, ये बिला शक्को शुबा हक है। क्या हक है, इसके बारे में मुतअद्दद कौल है। एक तो यह है कि इससे मुरादा कुरान, अल्लाह ताला फरमाता है कि आसमान और जमीन के रब की कसम ये कुरान हक है। ये जो फरमाया गया कि तुम्हारा रिस्क आसमानों में है, ये आसमान और जमीन के रब की कसम, ये हक है कि तुम्हारा रिस्क आसमानों में है, तो गोया रिस्क के पीछे मारे मारे फिरने की जरूरत नहीं, असबाब इख्तियार करे, खुदा पे भरोसा करे और आखिरत की तैयारी करे। रिस्क के पीछे उतना मारा मारा ना फिरे, दुनिया से ज्यादा आखिरत की तरफ तवज्जो दे। तुम्हारा रिस्क तो खुदा के पास मौजूद है, जितना रिस्क तुम्हारी किस्मत में लिखा तुम्हें मिलेगा, लिहाजा उसके पीछे खुद को बावला और दीवाना ना करें। कोशिश की नफी नहीं है, कोशिश के बगैर तो रिस्क नहीं मिलता, कोशिश तो करनी ही होती है। बच्चों को उनके माँ बाप जो है वो खिला पिला देते हैं, लेकिन जो आम निज़ाम ज़िंदगी है वो यही है कि आदमी मेहनत करता है तो उसको रिस्क मिलता है। तदबीर का इख्तियार करना तो हुक्म शरीयत है, तदबीर का इख्तियार करना तो हुक्म शरीयत है, लेकिन तदबीर इख्तियार करके वो जो उसका नतीजा है वो खुदा पे छोड़ा जाए और खुदा के राजिक होने पर एतमाद रखा जाए। और जब खुदा के राजिक होने पर एतमाद और ईमान होगा तो फिर आदमी हराम के अंदर अपना रिस्क तलाश नहीं करेगा, फिर हलाल के अंदर रिस्क तलाश करेगा। अब इसके बाद एक वाकया का बयान शुरू होता है और उस वाक्य के अंदर मजीद एक दूसरा वाकया है, और ये है हजरत इब्राहिम अलैहि सलात व सलाम का वाकया। हजरत इब्राहिम अलैहि सलात व सलाम के पास फरिश्ते मेहमानों की सूरत में हाजिर हुए। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने उनके सामने खाने के लिए बछड़े का गोश्त पेश किया, उन्होंने नहीं खाया। तो ये वाकया शुरू होता है और फिर इसके बाद ये पूरा वाकया आगे चलेगा, तो मैं उसकी आयात और उसका तर्जमा अर्ज करता हूं। इरशाद होता है हल अता का हदीफ बोईफ इब्राहिम अल मुकरमीन इज दखलू अलैहि फकालू सलामा قال سلام قوم منكرون। ए हबीब, क्या तुम्हारे पास इब्राहिम के मुअज्जज मेहमानों की खबर आई? जब वो मुअज्जज मेहमान इब्राहिम के पास आए तो उन्होंने कहा सलाम। इब्राहिम ने जवाब दिया सलाम। अजनबी लोग हैं, अजनबी लोग हैं। अब इरशाद होता है, फिर इब्राहिम अपने घर गया तो एक फरबा बछड़ा ले आया, फिर उसे उन फरिश्तों के पास रखा, कहा क्या तुम खाते नहीं? तो इब्राहिम अपने जी में उनसे डरने लगा। वो बोले डरिए नहीं। और फरिश्तों ने इब्राहिम को एक इल्म वाले लड़के की बशारत दी। इस वाकये के पीछे भी मुफस्सरीन किराम ने एक वाकया बयान किया है तमहीद के तौर पे कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलात व सलाम बड़े ही मेहमान नवाज थे, हत्ता कि मेहमान के बगैर आप खाना ही नहीं खाते थे। जब तक आपके साथ दस्तरखान पे मेहमान ना हो आप खाना ही नहीं खाते थे, और मेहमानों की खातिर आप उनको तलाश करने निकलते थे, बाकायदा देखते थे कोई मुसाफिर हो, कोई मेहमान हो जिसे साथ लाके खाना खिलाए। एक मरतबा कई दिन तक आपको कोई मेहमान ना मिला और आप जो है वो भूख की वजह से, आप पे जो है वो आसार भूख के जाहिर थे, तो आपको चंद मेहमान नजर आए, अजनबी थे। तो आपने कहा कि ये लाजमी बात है कि किसी और इलाके से आए होंगे, जो इनकी शक्लें जानी पहचानी नहीं है, ये हमारे इलाके के तो नहीं लगते। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन मेहमानों को लेकर अपने घर आए। मेहमानों से जब आमना सामना हुआ तो मेहमानों ने कहा सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे सलाम कहा तो आपस में सलाम जवाब का तबादला हुआ। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा कि चूंकि मेहमान है तो इन्होंने कहाँ खाना खाया होगा, अपने घर गए और एक भुना हुआ बछड़ा, गाय का बछड़ा भुना हुआ आप उनके लिए तैयार करके ले आए। अब जब उनके सामने रखा तो वो खाए नहीं, उन्होंने अपना हाथ खाने की तरफ बढ़ाया ही नहीं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में डर पैदा हुआ, खौफ पैदा हुआ कि जो लोग मेरा मेरे दस्तरखान का खाना नहीं खा रहे, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई दुश्मन है और इनका मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा है। क्योंकि जो बंदा किसी के घर खाना खाता है तो वो लिहाज करता है, जो किसी के यहाँ खाना खाता है वो लिहाज करता है। ऐसा नहीं होता कि आदमी किसी के घर खाना खाए और बाद में मेजबान को जब वो गोली मार दे, तो ऐसा कोई परले दर्जे का बेहमियत और बेगैरत किस्म का हो तो एक जुदा बात है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जब आदमी किसी के खाना खाता है तो फिर बोलते हैं ना कि नमक का लिहाज करते हैं, यार इसके घर का नमक खाया हुआ। तो अब जब उन फरिश्तों ने कुछ भी नहीं खाया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में डर पैदा हुआ कि कहीं ये नुकसान पहुंचाने तो नहीं आए कोई। तो जब फरिश्तों ने महसूस किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ पैदा हुआ है तो उन्होंने फरमाया ला तखफ, ए इब्राहिम डरिए नहीं, हम खुदा के फरिश्ते हैं। तो पहले उन्होंने जाहिर नहीं किया था, इंसानों की शक्ल में आए थे, तो कहा कि आप डरिए नहीं, हम फरिश्ते हैं और हम आपको एक इल्म वाले बेटे की बशारत देने आए, इल्म वाला। जब हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की बशारत दी गई थी तो उस वक्त फरमाया था कि हिल्म वाले बेटे की, बर्दाश्त वाले बेटे की, क्योंकि उन्होंने कुर्बान होना था, वहां बर्दाश्त कुव्वते बर्दाश्त चाहिए थी। और यहां दूसरे बेटे की बशारत है तो यहां कहा कि हम आपको एक इल्म वाले बेटे की बशारत देने आए हैं। तो ये फरिश्तों ने जब जवाब दिया तो इस पर अब जो इल्म बेटे की बशारत हुई, और ये बड़ी एक हैरत अंगेज खबर थी। क्यों? इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो वसलाम की जो उम्र मुबारक थी वो तो तकरीबन 100 साल के करीब थी, और आपकी जौजा मोहतरमा हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो उम्र मुबारक थी वो भी उसी के करीब करीब थी। तो इतनी जो उम्र में, ऐसे बुढ़ापे में और ऐसी जो है वो उम्र के इस हिस्से में आम तौर पे औलाद होती नहीं है। जो उमूमी जो हम मुशाहदा है वो यही है कि औलाद होती नहीं है। तो अब जब हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो वहीं थोड़ा सा हटके खड़ी थी दूसरे कमरे में दरवाजे के पास, जब उन्होंने खबर सुनी तो उनका आगे से जो जज्बात का इजहार था वो फिर जैसे एक ऐसी यकदम हैरत अंगेज खबर मिले, और वो भी ऐसी औरत को कि जिसके दिल में औलाद की तमन्ना तो थी लेकिन उसको औलाद नहीं मिली थी, और मद्दे मुकाबले में दूसरी जो यानी उनकी जो सौकर बनती है हजरते इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी जौजा मोहतरमा हजरते हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके यहाँ औलाद मौजूद थी। तो अब एक तो बुढ़ापा, और बुढ़ापे के अंदर औलाद की ऐसी खबर, तो अब उनका जो आगे से एक्साइटमेंट थी और जो उनके जज्बात का इजहार हुआ, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फअक्बलत इमरातुहू फी सर्रतिन फसक्कत वजहहा वकालत अजूजुन अकीम कालू कذلك قال ربك इन्नहू हुवल हकीम अलीम। तो इब्राहिम की बीवी चिल्लाती हुई आई, फिर अपने चेहरे पर हाथ मारा और कहा, क्या बूढ़ी बांझ औरत, क्या बूढ़ी बांझ औरत, मुराद ये के बच्चा जने। फरिश्तों ने कहा, तुम्हारे रब ने यूं ही फरमाया है, बेशक वही हिकमत वाला इल्म वाला है। तो ये हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा का आगे से जो एक अंदाज था उसका बयान है कि वो चिल्लाती हुई आई कि ये कैसे हो सकता है, इतने बुढ़ापे के अंदर औलाद कहां से मिलेगी, और अपने चेहरे पर हाथ मारा, मुराद ये कि अपनी पेशानी में, जैसे औरतें जो है ना वो हैरत के अंदर और इस तरह करती हैं, तो उस अंदाज के अंदर हाथ मारा और कहा कि अजूजुल अकीम, बुढ़िया बांझ जिसके अभी तक बच्चा नहीं हुआ और उम्र जो है वो इस कदर हो गई, 90 साल या 99 साल की उम्र थी, तो कहे इस उम्र के अंदर बच्चा। तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि आपके रब ने यही फरमाया है, आपके रब ने यही फरमाया है, और बेशक वही हिकमत वाला इल्म वाला है, लिहाजा अल्लाह ताला ने जब यूं ही फरमाया है तो फिर ऐसे ही होगा। अब फरिश्तों की आमद का जो दूसरा मकसद था, अब उसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि तुम्हारे आने का मकसद सिर्फ ये खुशखबरी देना था या कुछ और भी है, तो फिर उन्होंने अगला जवाब दिया और फिर उसके बाद अगले वाक्य की तफसील शुरू होगी। इरशाद फरमाया, قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين। इब्राहिम ने फरमाया, तो ऐ भेजे हुए फरिश्तो, फिर तुम्हारा क्या मकसद है, तुम्हारे आने का क्या मकसद है। फरिश्तों ने जवाब दिया, बेशक हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर गारे के पत्थर बरसाएं जिन पर तुम्हारे रब के पास से हद से बढ़ने वालों के लिए निशान लगाए हुए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आने का दूसरा मकसद पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं। वो मुजरिम कौम कौम है कौम लूत, जो लिवातत और मर्दों की मर्दों के साथ बदकारी और इगलामबाजी के अंदर मुब्तला थे। तो फरमाया कि हमें उनकी तरफ भेजा गया है और उन पर अजाब बरसाया जाएगा, उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे जिन पर निशान लगे हुए हैं कि ये पत्थर फलां को लगे, ये पत्थर फलां को लगे, तो हम उनको अजाब देने के लिए आए। अब इसके ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर मुकालमा किया, सवाल जवाब किया, ये कुरान पाक में और जगहों पे मजकूर भी है कि फरिश्तों से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए फरिश्तो, वहां तो लूत अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और उनके साथ दीगर ईमान वाले मौजूद हैं, उनके होते हुए तुम उनको कैसे तबाह करोगे, कैसे हलाक करोगे। तो फरिश्तों ने कहा कि हम उनको पहले वहां से निकाल देंगे, लूत अलैहिस्सलाम और जो ईमान वाले हैं उनको हम उस बस्ती से निकाल देंगे, उनके बस्ती से निकलने के बाद अजाब आएगा। चुनाचे उन्होंने कहा, फअखरजना मन कान फीहा मिनल मुमिनीन फमा वजदना फीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन। तो हमने उस शहर में मौजूद ईमान वालों को निकाल लिया, तो हमने वहां एक ही घर मुसलमान पाया, सिर्फ एक घर मुसलमान था और वो हजरते लूत अलैहिस्सलाम का, और उसमें भी उनकी बीवी शामिल नहीं थी, लूत अलैहि सलाम की बीवी काफिरा थी, उस पर भी अजाब आया। अब मजीद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वतरकना फीहा आयतल लिल्लदीन यखाफून العذاب الالم, और हमने उसमें उन लोगों के लिए निशानी बाकी रखी जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। उस बस्ती के अंदर निशानी है किन के लिए? जो अजाब अलीम से डरते हैं, दर्दनाक अजाब से डरते हैं। निशानी है कि जो लिवातत, बदफेली, लड़कों का आपस के अंदर जो है वो गंदी हरकतें करना जो ये करते हैं, उनके लिए इसमें इबरत की निशानी है, इबरत की निशानी। आज तो ये गंदा फेल ऐसा है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ने कानूनी तौर पर हम जिंस परस्ती को जायज करार दिया और इनके निकाह को जायज करार दिया हुआ है। अभी चंद दिन पहले ही मैं खबर पढ़ रहा था कि एक बहुत बड़े मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर यह कानून पास हुआ तो खुशी के मारे वो दीवाने हो गए। जो पार्लियामेंट के अराकीन है वो पागलों की तरह खुशी मना रहे हैं कि ये कानून पास हो गया कि मर्द मर्दों से निकाह कर सकते हैं। अलमान वल हफीज, अलमान वल हफीज। इन शैतानों का जो अंजाम होगा वो देखने वाला होगा। दुनिया में अगर खुदा ने इनको फौरी हलाक ना भी किया तो आखिरत का अजाब बड़ा दर्दनाक होगा। अब इनके बाद ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान हुआ, फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अहवाल और अंजाम का बयान हुआ। अब उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और भी बहुत से रसूलों में अल्लाह की निशानियां हैं। किस एतबार से निशानियां हैं? कि इनसे दर्स हासिल किया जाए। निशानियां दो तरह की हैं, या यूं कह लें कि दर्स दो तरह का, एक दर्स इबरत है, एक दर्स नसीहत है, दर्स फजीलत है। कुफार और उनका अंजाम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो दर्स इबरत है, और खुदा के प्यारों का, खुदा के नबियों का, खुदा के महबूब बंदों का, खुदा के रसूलों का, हम उनका पढ़ते हैं तो उसके अंदर नसीहत है, उसमें जो है वो अजमत सीखना है, उसमें फजीलत सीखना है, उनमें जो है वो कमालात सीखना है, खुदा की बंदगी सीखना उनके अंदर पाया जाता है। तो अब उस एतबार से बयान होता है, इरशाद फरमाया, वफी मूसा इज अरसलनाहु इला फिरऔन बिसुल्तानिम मुबीन फतवल्ला बिरुकनिही वकाल साहिरुन औ मजनून। और मूसा में भी निशानी है, जब हमने उसे रोशन सनद के साथ फिरौन की तरफ भेजा और वो फिरौन अपने लश्कर समेत फिर गया और बोला, मूसा तो जादूगर है या दीवाना। फअखदनाहु वजनूदहु फनबदनाहुम फिल यम्मि वहुवा मुलीम। तो हमने फिरौन और उसके लश्कर को पकड़कर दरिया में डाल दिया, इस हाल में कि वो खुद को मलामत कर रहा था। फरमाया जो मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया, इसमें भी नसीहत है। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र है, हिम्मत है, हौसला है, उनकी अजीमत है, उलुल अज़्मी है, बहादुरी है, कौम का नजात दहिंदा होना है, और दूसरी तरफ मद्दे मुकाबिल फिरौन है कि उसने सब कुछ सुन के कहा कि मूसा माद अल्लाह या तो पागल है या जादूगर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर हमने उसकी इस बकवास के ऊपर और सरकशी के ऊपर उसका जो अंजाम किया, पकड़ के दरिया में डाल दिया। और वो खुद को मलामत कर रहा था, उस वक्त कह रहा था कि मैं मानता हूं, मैं ईमान लाया मूसा के रब पे, हारून के रब पे, लेकिन मानने का फायदा कोई नहीं। अब उसके बाद एक और वाकया बयान करके कहा जाता है कि इसमें भी खुदा की निशानी है। क्या? इसमें दर से इबरत भी है और दर से नसीहत भी है। इरशाद होता है, वफी आदिन इज अरसलना अलैहिमु रीहल अकीम मा तवरु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कररमीम। और कौम आद में भी निशानी है, जब हमने उन पर खुश्क आंधी भेजी, वो जिस चीज पर गुजरती थी उसे गली हुई चीज की तरह कर छोड़ती। कौम आद जिनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, तो उन पे अजाब क्या आया था? उन पे खुश्क आंधी भेजी गई थी, वो खुश्क आंधी चली, जिस चीज पे गुजरती तबाहो बर्बाद कर देती, मिलिया मिट कर देती, तहस नहस कर देती, निस्तो नबूद कर देती, ऐसे जैसे गली सड़ी सी चीजें पड़ी होती हैं, ये उनका अंजाम कर दिया। फरमाया इस वाकये में भी निशानी है। किन के लिए? जो नहीं मानते, जो मुनकिर है, जो कुफार है। अब उसके बाद कौम समूद का बयान होता है, जो हजरत सालेह अलैहि सलातो वसलाम की कौम थी। फरमाए वफी समूद इज कील लहुम तमत्तउ हत्ता हीन فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين। और समूद में निशानी है, जब उनसे फरमाया गया एक वक्त तक फायदा उठा लो, तो उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरकशी की, तो उनकी आंखों के सामने उन्हें कड़क ने आ लिया, तो वो ना खड़े हो सके और ना वो बदला ले सकते थे, और उनसे पहले कौम नूह को हलाक फरमाया, बेशक वो भी फासिक लोग थे। कौम नूह वाले भी फासिक लोग थे। तो ये दो कौमों का यहां पर बयान कर दिया। तो ये मुख्तलिफ कौमों का अंजाम बयान करके कुफारे मक्का को और उन लोगों को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर थे, उनको ये तंबीह फरमाई गई, और वो पिछले वाकयात बयान करके उनको डराया गया कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो तुम्हारे साथ भी इसी तरह का सलूक हो सकता है, अजाब खुदाबंदी का कोड़ा तुम पर भी बरस सकता है। अब उसके बाद अल्लाह ताला अपनी कुदरत बयान फरमाता है और उसके जरिए लोगों को दावत तौहीद और खुदा पर ईमान लाने की दावत देता है। इरशाद फरमाया والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون। और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम वुसअत व कुदरत वाले हैं, और जमीन को हमने फर्श बनाया तो हम क्या ही अच्छा बिछाने वाले हैं। आसमान को अई दिन से बनाया, इसका तावीली माना जो उलमा ने बयान फरमाया वो ये है कि हमने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया, और ऐदिन जो है ये यदुन की जमा भी है, और उस एतबार से इसका तर्जमा है कि हमने उसे अपने हाथों से बनाया, जो खुदा की शान के लायक है। और फरमाया बेशक हम वुसअत कुदरत वाले हैं, और जमीन को फर्श भी ना बनाया कि जैसे और इसको ना इतना नरम बनाया कि धंस जाओ, ना इतना सख्त बनाया कि उग कुछ ना सके, हमने इसे फर्श बनाया कि तुम्हारे नीचे ये बिछी हुई है। तो फरमाया कि हम क्या ही अच्छा बिछाने वाले हैं। अब मजीद फरमाया वमिन कुल्लि शयइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, और हमने हर चीज की दो किस्में बनाई ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अल्लाह ताला ने अशिया के जोड़े जोड़े बनाए, सूरज चांद है, दिन रात है, खुश्की तरी है, गर्मी सर्दी है, जिन इंसान है, अंधेरा उजाला है, ईमान और कुफर है, सआदत और शकावत है। तो अल्लाह ताला ने अशिया के जोड़े बनाए, हत्ता कि अब जो जदीद साइंस की तहकीकात हैं उसकी रोशनी में तो ये भी पता चल गया कि दरख्तों तक के अंदर, वैसे तो ये बड़ी पुरानी मालूमात है, 1400 साल पहले भी ये तरीका लोगों में राइज था, ताबीर नखल जिसको जो है जिसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, के दरख्तों के अंदर भी और उनके अज्जा के अंदर भी मुजक्कर मुअन्नस होते हैं, और अगर दरख्तों के मुअन्नस और मुजक्कर को मिलाकर उनकी पैमंदकारी करके अगर फसल और बाग उगाए जाएं तो पैदावार बहुत ज्यादा होती, कि मुजक्कर और मुअन्नस के मिलाप से पैदावार ज्यादा होती है। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हर शय से जोड़े बनाए। अब अल्लाह ताला फरमाता है फ़फिर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन वला तज़अलू मअल्लाहि इलाहन आखर इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। तो अल्लाह की तरफ भागो, बेशक ए लोगो मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिए खुल्लम खुल्ला डर सुनाने वाला, और अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना ठहराओ, बेशक मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिए खुल्लम खुल्ला डर सुनाने वाला हूं। अल्लाह की तरफ भागो, मुराद उस पर ईमान लाने की तरफ, उसकी बंदगी की तरफ, उसकी तरह उसकी बारगाह में तौबा की तरफ, उसकी इताअत की तरफ दौड़ो, यानी उसमें जल्दी करो। अब इरशाद होता है, كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون। यूं ही जब इनसे पहले लोगों के पास कोई रसूल तशरीफ लाया तो वो यही बोले कि ये जादूगर है या दीवाना, क्या इन्होंने एक दूसरे को वसीयत की थी, बल्कि वो सरकश लोग हैं। ये आयत मुबारका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तस्कीन कल्ब के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए और आपका हिम्मत व हौसला बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई। फरमाया कि ये कुफार आपको मजनून कहते हैं, शायर कहते हैं और इस तरह जादूगर कहते हैं, तो ये कोई नया तरीका नहीं है। हमेशा से ऐसा होता आया है कि जब कोई अल्लाह का रसूल तशरीफ लाता है तो मुनकिरीन, मुखालिफीन और कुफार या उसको साहिर जादूगर कहते हैं या उसको शायर कहते हैं या उसको वो कोई ना कोई इस तरह की बेअदबी और गुस्ताखी का लफ्ज बोलते हैं। तो फरमाया कि पहले भी ऐसे जुमले बोलते थे, ये कुफारे मक्का भी ऐसे बोल रहे, तो क्या इन्होंने एक दूसरे को उसकी वसीयत की थी कि हर मुशरिक और काफिर कौम अपनी बाद वाली नस्लों को नसीहत करती गई कि खुदा का कोई भी रसूल आएगा तो तुमने उसको साहिर कहना है, तुमने उसको मजनून कहना है, क्या ये एक दूसरे को वसीयत करते रहे? तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन फरमाया कि मामला ये है कि ये सारे हैं सरकश, वो भी सरकश थे, तो अब अपनी सरकशी के लिए उनको कोई ऐसे घटिया अल्फाज चाहिए थे जिससे वो अपनी कमीनगी को जाहिर कर सके और माअदल्लाह अल्लाह के रसूलों से लोगों को दूर कर सके। तो उनकी दिलो दिमाग के अंदर भी जो घटिया लफ्ज शैतान की तरफ से आए वो यही थे, साहिर है, शायर है और ये जो है वो मजनून है। और यही हाल जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने के काफिरों का है कि उन्होंने भी इसी तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए। तो ये इनकी सरकशी है जो कदरे मुश्तरक है, जो सिफत बद मुश्तरक है पिछले जमाने के तागियों और सरकशों के दरमियान और अब के सरकशों के दरमियान, के जिसकी वजह से इनके जुमले भी आपस के अंदर मिलते जुलते हैं। तो अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फतवल्ला अनहुम फमा अंत बिमलूम वज़क्किर फइन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। तो ए हबीब, तुम इनसे मुंह फेर लो, तो तुम पर कोई मलामत नहीं, और समझाओ के समझाना ईमान वालों को नफा देता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाया, आपके दावत देने कोशिश फरमाने से अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो आप इनसे अपना मुंह फेर लें और इनके ऊपर अपना दिल ना जलाएं। आप पे कोई मलामत नहीं, आपका काम दावत देना था, आपने दे दी। और मुबल्लिग का यही काम होता है, उसको जबरन मनवा के छोड़ना ये मुबल्लिग का काम नहीं और ना ही ये रसूल को इसका हुक्म दिया गया। लिहाजा फरमाया कि आप पे कोई मलामत नहीं, हां जो ईमान वाले हैं उनको समझाओ, उनको नसीहत करो कि मोमिनों को नसीहत करना नफा देता है, सरकशों को नफा नहीं होता लेकिन मोमिनों को नफा होता है। तो ये हमारे लिए भी हुक्म है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को नसीहत करें, हम उनको समझाएं, बुराई से रोकें, नेकी का हुक्म दें, किसी बुराई में मुब्तला देखें तो उसके बारे में समझाएं, उन्हें उनके हाल पे ना छोड़ दें कि भाई इसने जो करना इसकी मर्जी, हमें क्या। नहीं, मुसलमान का तर्ज अमल ये नहीं, मुसलमान का मनसब ये नहीं। ये उम्मत खैर उम्मत है, ये बेहतरीन उम्मत है, ये उम्मतन वसतन है। इस उम्मत का फरीजा है, इसका मनसब है लोगों को नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना। इनके लिए ये नहीं है कि अपने अमल करते जाओ, दूसरों को उनके हाल पे छोड़ दो, कोई चोरी करे, बदकारी करे, मौशरा खराब हो, बर्बाद हो, तबाह हो, सूद फैले, रिश्वत फैले, सब कुछ होता रहे, पर तुम चुप करके मस्जिद के मेहराब के अंदर बैठे रहो। हमें इसकी इजाजत नहीं। हमें हुक्म है कि हुक्म अज़ा है कि तुम खड़े होके लोगों को समझाओ, लोगों को दावत दो, लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ, दीन की तरफ बुलाओ, खुदा की तरफ बुलाओ, नमाजों की तरफ बुलाओ, इबादत की तरफ बुलाओ, खुदा की बंदगी की तरफ बुलाओ। हमें ये हुक्म है, खामोशी और चुप रहने का हमें हुक्म नहीं। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कायनात को बनाने का, इंसानों और जिन्नों को पैदा करने का मकसद बयान होता है। इरशाद फरमाया, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन और आदमी इसी लिए बनाए कि मेरी इबादत करे। इंसान की पैदाइश का मकसद, जिन्नों की पैदाइश का मकसद अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी। वो इबादत, वो बंदगी कि जिससे कुफार तो बिल्कुल ही दूर है, कि मानते ही नहीं, लेकिन अफसोस ये है कि मुसलमानों की अक्सरियत भी उसी मकसद जिंदगी से दूर है, मकसद जिंदगी से दूर है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी तो बंदगी के लिए है, अल्लाह की इबादत के लिए है। बेबंदगी, इबादत के बगैर तो जिंदगी शर्मिंदगी है। तो इबादत मकसद आला है, मकसद अव्वल है, मकसद आजम है इंसानों और जिन्नों की पैदाइश का। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर वक्त तो हम इबादत नहीं कर सकते, यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर वक्त हम मस्जिद में बैठे रहे, हर वक्त हाथ में तस्बीह हो, हर वक्त जो है वो जिक्र दुरूद ही पढ़ते रहे। कारोबार भी करना है, बीवी बच्चे भी देखने हैं, रिश्तेदार भी हैं, शादी गमी पे आना जाना है, दोस्तों के साथ भी उठना बैठना होता है, तो हर वक्त फिर इबादत कैसे हो सकती है? तो उसका, उसके बहुत सारे जवाब है, लेकिन एक आसान सा जवाब मैं अर्ज करता हूं कि जब हमारा हर काम, हर काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगा, तो उस लम्हे वो काम करते हुए भी हम खुदा की इबादत कर रहे होंगे। हमें रिश्वत मिल रही है, 1 करोड़ रुपया रिश्वत मिल रही है, हमने इसलिए छोड़ दी कि यार खुदा ने इसको हराम करार दिया है, तो अब हमारा उसको तर्क कर देना ये भी अल्लाह की इबादत है। गुनाह का छोड़ना खुदा की आला दर्जे की इबादत। इसी तरह हम बीवी बच्चों के हुकूक पूरे करते हैं, हम मां बाप की खिदमत करते हैं, हम गरीबों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, हम दोस्तों का दिल जायज तरीके से खुश करते हैं, हम गुनाह के कामों से बचते हैं, हम हमारा खाना पीना हलाल है और सुन्नत के मुताबिक है, तो हमारी यही चीजें भी इबादत बन जाती। हम कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, वो भी शरीयत के अहकाम के मुताबिक है, और उसमें भी हम खुदा की रिजा और दीगर अच्छी नियतों को शामिल करते हैं, तो वो चीजें भी इबादत में तब्दील हो जाती है। तो ये है कि हम सारी जिंदगी इबादत में गुजार सकते हैं। अब अल्लाह ताला फरमाता है, मा उरीद मिनहुम मिर रिज़्क व मा उरीद अन युतइमून, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, मैं उनसे कुछ रिस्क नहीं मांगता और ना ये चाहता हूं कि वो मुझे खाना दे, बेशक अल्लाह ही बड़ा रिस्क देने वाला, कुव्वत वाला, कुदरत वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इबादत के लिए पैदा किया, मुझे लोगों की तरफ से कोई रिस्क नहीं चाहिए, कोई ये नहीं चाहिए कि वो खाने खुदा को पेश किया करे। अल्लाह ताला इससे पाक है, अल्लाह ताला खाने से ही पाक है, अल्लाह ताला इससे पाक है। लेकिन वो फरमाता है कि मेरी इबादत करो, बंदगी करो, रिस्क देने वाला वो तो खुद खुदा है। खुदा को रिस्क क्या दोगे, खुदा तो खुद रासिक है, वो तुम्हें रिस्क देता है, वो कुव्वत वाला है, कुदरत वाला है। अब फरमाता, फइन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू ज़नूबं मिस्ल ज़नूबि अस्हाबिहिम फला यस्तअजिलून, फवैलुल लिल्लज़ीना कफरू मिन यौमिहिमुल लज़ी युअदून, तो बेशक उन जालिमों के लिए अजाब का एक हिस्सा है जैसे उनके साथियों के अजाब का हिस्सा था, तो ये मुझसे अजाब मांगने में जल्दी ना करें। तो काफिरों के लिए उनके उस दिन से खराबी है जिसकी उन्हें वईद सुनाई जाती है। फरमाया कि इन काफिरों के लिए भी, इन जालिमों के लिए भी अजाब का एक हिस्सा है जैसा इनके जो पिछले साथी गुजरे, जो पिछली कौमें गुजरी हैं, उनके लिए अजाब का हिस्सा था। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी पनाह में रखे, अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए, अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।